क्या प्रातः क्लास है? सोलह तीन 1966। गुरुवार को रिकॉर्ड चला, रात की राई थक मत जाना, सुबह की रंगीन दूर में। राई का अर्थ तो सुना और बच्चों ने समझा, बच्चों की सिवाय और तो कोई अर्थ समझ नहीं सकते। ये अज्ञान की बात है ना, गाया भी जाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। और अभी हम संगम पर हैं, ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण लोग, तुम ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मणों के जो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। बच्चे जान चुके, इस समय मनुष्य मात्र में 5 विकार हैं। इसलिए बाप ने समझाया है, 5 विकार विकार वाले मनुष्य तो सब बंदर मिसल। तो बंदरों में भी जो बड़े बंदर होते हैं, किस्म किस्म के बंदर, बंदर में एक प्रकार की होती हैं। एप्स भी होते हैं, उनका नाम रखा जाता है और वो मनुष्य जैसे होते हैं, उनको सिखलाते हैं, चाय पिलाना भी सिखलाते हैं। वो एक क्वालिटी होती है। तो बंदरों की भी क्वालिटीज होती है, मनुष्य समय जाएंगे कि बरोबर सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी। अर्थात देखने में सूरत मनुष्य जैसी दिखाई देती है, परंतु कर्म बंदरों जैसे है। और बात समझाएंगे कि भारतवासी इस समय में बंदर मिसल है। फीचर्स में अनेक प्रकार के जरूर हैं, परंतु ये बंदर क्यों बने? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ऐसे लक्ष्मीनारायण मिसल जो देवी देवताएं थे और थे भी मनुष्य, परंतु सीरत तुम्हारी बड़ी अच्छी थी, सर्वगुण संपन्न थे, सोलह कला संपूर्ण थे, संपूर्ण विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और तुम विश्व के मालिक थे। तुम इतने विश्व के मालिक और हीरे जैसे मंदिर, तो तुम ऐसे बंदर मिसल कैसे हो गए? सवाल तो उठेगा ना। परंतु ये तुमको समझाया जाता है, और मनुष्य अब नहीं समझते हैं। क्योंकि वो अभी तक बंदर के बंदर हैं। तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कुछ फेरा पाया है, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, ऐसे भी मत समझो कि हम कोई देवता बन गए। नहीं, अभी ये चेंज हो रहा है, रिजुविनेट हो रहे हैं, तो कुछ फेरा है, कोई थोड़ा फेरा है, कोई जास्ती परसेंटेज में फिरे, कोई 10% फिरे। तो जो सीरत है वो बदलती जाती है, ये बात तो समझते हो ना। दुनिया को तो ये मालूम नहीं है कि भारत तो है नहीं था, सो भी भारत को कितना समय लगा, बोलते कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत देवी देवता था, शुद्ध भगवती भगवान भी कहा जाता है, ऐसे बोलते। भगवान में गुण होते हैं ना, भगवान को कोई निर्गुण तो नहीं कहेंगे ना। निर्गुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं, जो बंदर होते हैं ना, उनको ये कोई अर्थ मालूम नहीं होता है कि निर्गुण का अर्थ क्या है। वो तो निर्गुण भगवान को ही कह देते हैं, और मनुष्य कहते हैं कि मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो ही। वो निर्गुण भगवान को भी कहा जाता है। एक संस्था सुनी है ना निर्गुण बालकों की, निर्गुण जिनमें कोई भी गुण नहीं। अरे देखो कितना अच्छा नाम, मनुष्य समझते ये भी बहुत अच्छा नाम है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जैसे बंदर मिसल है, मनुष्य को प्रश्न में नहीं आता है कि भला ऐसा व्यवहार था, कितना ऊंच और हीरे मिसल बहुत बहुत साहूकार, अभी इनका ये डाउनफॉल कैसे हुआ? ये डाउनफॉल हुआ ना, भारत जो स्वर्ग था और यहाँ देवी देवताएं रहते थे जो बहुत धनवान थे, वो इतना इनका डाउनफॉल कैसे हो गया? इतना डाउनफॉल जो इस समय वो भारतवासी बिल्कुल ही कंगाल, और इस समय इनकी सूरत बिल्कुल एकदम मनुष्य की, परंतु सीरत सारी बंदरों जैसी। गाया तो यह है ना, यही भारतवासी जिनकी सूरत देवताओं की और सीरत भी देवताओं की थी, धर्म श्रेष्ठ थे, कर्म श्रेष्ठ थे, तो कहेंगे ना देवी देवताओं का धर्म भी श्रेष्ठ था, बड़े खूबसूरत थे, तो नाम भी है उनका गोरा, और श्री कृष्ण को सिर्फ गोरा थोड़े ही कहते थे, नहीं नहीं बात इन विचारों को मालूम नहीं है, जैसे बंदर बेसमझ इसको कहा जाता है बंदर, तो बाप आकर कहते सच सच तुम बंदरों से भी व्यस्त बदतर हो बने, बाप ने आकर के समझाया, तो अभी ऐसे कैसे बने? तुम्हारा ये इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? बैठ करके भारतवासी जो बच्चे आते हैं, जिन्हें कल पहले भी समझा था और समझा भी सकते हैं, तुम लोग समझा सकते हो, जो अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं, जिनकी कुछ सूरत तो है परंतु सीरत जिनकी कुछ सुधरी भी हुई है, अभी सीरत सुधरती कैसे है? सूरत तो मनुष्य की है, सीरत कैसे सुधरे? तो बाप बैठ करके कहते हैं बच्चे तुम जब देवता थे तब आत्मा अभिमानी थे, और फिर जब रावण का राज्य शुरू हुआ तो तुम देह अभिमानी बन गए। ये बीमारी जो तुम लोगों को लगी है वो सबसे जास्ती बड़े से बड़ी बीमारी लग पड़ी, बीमारी का नाम बताया देह अभिमान की बीमारी, सचिव में तुम आत्मा अभिमानी थे और फिर बहुत सुखी थे, ऐसा आत्माभिमानी तुमको किसने बनाया? इस बात को भारतवासी भी नहीं जानते। देखो बाप कहते हैं कि मैंने आगे भी कहा था मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात आत्माभिमानी भव। आगे भी कहा था कि हे बच्चे देही अभिमानी भव, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है? क्योंकि तुम देह अभिमानी बन गए हो। सोलह तीन छियासठ वाणी का दूसरा पेज। भारत जो इतना बंदर मिसल हो गया है, इतना कंगाल बन गए हैं, बर्थनाते पहले उनका मूल कारण क्या है? अभी तो कोई मनुष्य नहीं समझते हैं, तो सभी देहाभिमानी है, बिल्कुल देहाभिमानी। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले भी देहाभिमानी। तो बड़े बड़े हिरण्यकश्यप है, जैसे देहाभिमानी व्यक्ति है, जिसे बाप बैठ करके साफ समझाते हैं, तो मूल कारण क्या हो गया? जब रावण राज शुरू हुआ ड्रामा अनुसार, वन ड्रामा प्लेन अनुसार जो भी समझाते रहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है और इस ड्रामा को मैं ही जानता हूँ। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। मैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं जान आता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। ब्रह्मा भी नहीं समझते कि भला हम जो भारतवासी इतने साहूकार थे, ये इतना गरीब कैसे बन गए? हमको तो कोई आकर समझा नहीं सकता। तो बैठे हुए हैं, हमारा बोई आदि सनातन देवी देवता धर्म है, परंतु हम ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कैसे बने? तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे, फिर जो देही अभिमानी थे, तो जब रावण राज शुरू हुआ तब देह अभिमानी बन गए, और देह अभिमानी ऐसा बने जो पूज्य से पुजारी बन गए। जब देही अभिमानी थे तो पूज्य थे, जब देहाभिमानी बने तुम्हारा डाउनफॉल ऐसा होने लगा जो पुजारी बन गए। तो देखो ये सीढ़ी भी दिखलाई है, कैसे ऊपर से डाउनफॉल होकर के नीचे गिर पड़ती है। भारत का इतना डाउनफॉल, बिल्कुल ही बर्थनाटी पहनी बन गए। ऐसा बनने का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल गए। तो मुख्य बात हुई देह अभिमान की। बस देह अभिमानी बनने से पीछे देखो, ऐसे एप्स जैसे, ऐप जैसे बंदर होती है ना, उनको वन मानुष या मनुष्य कहते हैं, वन का जंगल का मनुष्य। तो बरोबर ये कांटों का जंगल है ना, जहाँ बड़े बड़े कांटे हैं दुख देने वाले, जिसको कहते हैं बंदर, यानी जंगल का रहने वाला। और बड़े बंदरों को ऐप कहते हैं, वन मानुष, जिनका नाम रख दिया हनुमान, सुग्रीव, बाली। उन शास्त्रों में बैठ करके बड़े बड़े बंदरों का नाम रखा है। ये बाप फिर ऐसे सुग्रीव बाली, और ये किसको कहते हैं? वो जो बड़े बड़े देह अभिमानी है, वो अपन को श्री श्री 108 जगदगुरु कहलाते हैं। बस इनसे बड़ा दे अभिमानी तो कोई हुआ ही नहीं ना। कहाँ वो शिव बाबा, सदात्मिक स्टेज में रहने वाला, सर्व का सब गति दाता, सबका बाप, और वो बड़े बड़े एप्स देखो। तो भी बाप बैठ करके कहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं ना, ये समझने की बातें हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य मात्र को ये राजा रानी, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको कोई पता नहीं है। उनको ये बात बुद्धि में आती है क्योंकि उन्होंने भी वो शास्त्र सुने हैं। उन्होंने सतयुग की आयु आंखों वर्ष ऊपर से लगाई दी। और ऐसे ही कई अभी आजकल के जो अच्छे अच्छे क्रिश्चियंस लोग हैं, वो हैं तो सबसे समझू, इनसे तो समझू है ना। तो वो कहते हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले ये वर्ल्ड पैराडाइज था, अभी वर्ल्ड पैराडाइज था ये बेचारे वो समझ नहीं सकते हैं कि कैसे था। ये तो प्राचीन भारत ही था, जो पहले पहले प्राचीन भारत था, इसको ही स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, पैराडाइज। है बिंदु उनको कहा जाता है, बहिष्ट भी उसको कहा जाता है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि आजकल जो भारत के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है, और बच्चे भी बहुत हैं जिन्हें थोड़ा भी ज्ञान है लेकिन देह अभिमान तो बहुत है। बस मेरे जैसा होशियार ज्ञानी कोई नहीं, ये अपने ही देह अभिमान में चक्रित होते रहते, गिरते भी रहते, क्योंकि देह अभिमान वाले देह अभिमान में नाम रूप में बहुत फंस मरते हैं। जो भी देह अभिमान वाले होंगे ना, वो बहुत मरेंगे। देखो ये सभी स्त्री पुरुष देही अभिमानी थे ना पहले, वो देह अभिमान में नहीं थे जिन्हें देवताएं कहा जाता है। भले स्त्री पुरुष थे ऐसे नहीं है कि उनके पिछाड़ी एकदम मोह था, वही सब कुछ था। अभी तो स्त्री के पिछाड़ी देखो जैसे बंदर है एकदम, मिसाल देते हैं ना बंदरों का, एकदम बंदर कितने खौफनाक हो जाते हैं। कितना स्त्री को मारते हैं, बंदरों के मिसल विकार के लिए मारते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि भारत की दुर्दशा कैसे हो गई, ये ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों बने। सभी भ्रष्टाचारी कहते हैं भ्रष्टाचारी वर्ण, ऐसे भी नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट भ्रष्टाचारी है या प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचारी है, या इनके असिस्टेंट मिनिस्टर साहब भ्रष्टाचारी है, नहीं नहीं सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि सभी पतित हैं। तो देखो ये बापूजी वो भी कहते थे कि हे पतितता बनाओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो, परंतु वो बेचारे को मालूम ही नहीं रहता था कि राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। देखो सभी बंदरों की कगार में है, वो किसी को मालूम ही नहीं है कि राम राज्य क्या है। तो वो भी राम राज्य मांग रहा था, सोलह तीन छियासठ की वाणी का तीसरा पेज। अब चूंकि सभी आत्माएं उनको सुख तो चाहिए और वो सुख उनको मिलता है बाप से, तो उस पतित पावन को याद करते हैं कि हे पतित पावन आ करके हमें पावन बनाओ। ये भी एक कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। देखो ये सन्यासी लोग हैं तो ये भी पतित पावन की तालियां बजाते रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो ऐसे थोड़े ही समझते हैं हम पतित हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष जैसे हैं। अरे हमारे बच्चे जो अभी एप्स से बदल करके ब्राह्मण बनते हैं, अरे बात मत पूछो, ऐसे थोड़े ही है कि वो कोई अभिमानी बन पड़े हैं। मुसीबत तो ये है बच्चों के ऊपर जो देह अभिमान में बहुत आ जाते हैं। बीमारी भी असल यही है, जिसने महारोगी बनाया है, बिल्कुल बरसना के पहले बनाया। इस बीमारी ने सब कुछ छीन लिया, पाई पैसे जैसे बरसना के पहले बने हैं, वो सारी देह अभिमान की बीमारी है। और ये बच्चे जानते भी हैं बरोबार देह अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत। अभी समझते तो हैं, तभी बाबा बैठे करके सभी बच्चों को ये भी कहते हैं, बच्चे अपन को घड़ी घड़ी देखो कि हम देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। जितना देही अभिमानी बनो और इतना ही तुम बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और बाप को याद करने से फिर तुम लोगों को रात दिन बहुत अथाह खुशी होती होनी चाहिए। अरे हमको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप मिला है, वो गया भी जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमपिता परमात्मा की। जब वो मिल गया अभी हमको किस प्रकार की परवाह रही। बच्चों को खुश होना चाहिए ना। अरे वाह, अभी तो हमको उस बात से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और वो खुद यही कहते हैं तुम्हारी सत्यानाश हुई है देह अभिमान से। अभी तुमको कह देता हूँ, देही अभिमानी बनो और माँ में कम याद करो, रहो भी अपने घर गृहस्थ व्यवहार में। बले भी जो वान प्रस्थ अवस्था या बंधन मुक्त है उसको सर्विस में लग सकती है, परंतु पहले पहले देही अभिमानी का अर्थ समझो। समझो कि मैं आत्मा हूँ। इस समय सारी जो दुनिया है वो सारी दुनिया देह अभिमानी। देखो देह अभिमान में है श्री श्री 108 जगत गुरु, तो देह को कहती है ना, हम जगत गुरु हैं। तो देखो धनी नोरी तो कोई है ही नहीं, तो सभी बंदर ही बंदर, दुनिया ही बंदरों की। बाप आकर के अभी समझते हैं, बच्चे समझते हैं ना, अभी सबको समझाना तो बाप का ही फर्ज है, ये तो समझना चाहिए ना। जो भारत इतना धनवान था, इतना ऊंच था, वो इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन समझा दे? इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? समझ सकेंगे? और दुनिया में कोई बता सकेंगे क्या? देखो ये मुख्य बात है ना, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ और मनुष्य देह अभिमानी से देह अभिमान में आने लगे, ये बात तो कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है कि देवताएं कोई देही अभिमानी थे, आत्मिक स्थिति में रहते थे। हाँ ये लिखा हुआ है कि वो देवताएं जानते थे ये आत्मा है, एक शरीर बड़ा होगा उसको छोड़ना होगा, फिर छोटा शरीर लेना होगा। तो आत्माभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही उनको देह अभिमानी बनाया। वही देवताएं देही अभिमानी से देह अभिमानी बन पड़े। बाप बोलते हैं मैं आता ही हूँ, इसलिए उनको फिर से देही अभिमानी बनाने के लिए। देह अभिमान के काम ब्रह्मा के प्लान अनुसार ये कुछ काम के नहीं रहे। अभी विदे को बाबा कहते हैं, इतना समझाता रहता हूँ कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम बहुत मीठे बनेंगे। बस अभिमानी बनने से तुम्हारा वो देह में नाम रूप में फंसना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसको गाली देना, लड़ना झगड़ना, फिर भी अपन में समझो ये सब बंदरपना है। अरे बाप तो यही समझाते हैं ना, बाकी ये उनके लिए भी तो ऐसे नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कहते ये पूरा देही अभिमानी बन गया है। देखो ये थोड़ा ही उनके लिए कहते हैं, तो बाबा बैठ करके समझाते हैं अब ये भी समझ रहे हैं समझते हो कि कौन बैठ करके हमको समझाते हैं कि ब्रह्मा समझाते हैं या शिव बाबा समझाते हैं। अरे भूल जाते हैं, दो अनुमान में आकर के बाप को ही भूल जाते हैं। देह अभिमानी को देह ही याद रहती है, देह अभिमान में आकर के बस इन ब्रह्म को ही समझ लेते हैं कि यही तुमको समझाते। समझाने वाला वो परमपिता परमात्मा शिव है निराकार, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप आज बहुत अच्छी तरह से बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, अरे बेअभिमानी तो बहुत बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बेअभिमानी बन पड़ते हैं। बोले ज्ञान में बड़े होशियार हैं, पर दे पर देवान देखो, वो लोग देही अभिमानी बन जाएंगे। ज्ञान तो कोई भी बच्चे समझ सकते हैं, और ये दुनिया की हिस्ट्री जियोग्राफी तुम कोई को भी समझा सकते हो। भले अभी सभी मनुष्य पतित हैं, बंदर हैं, पहले तो देवताओं की दुनिया थी। हिस्ट्री समझना तो बिल्कुल सहज है कि बरोबर पहले पहले सूर्यवंशी राज्य था, बाद में चंद्रवंशी राज्य था, सोलह तीन छियासठ की वाणी का चौथा पे ये बात जरूर है कि खाली उन लोगों को दामा का पता नहीं, समझाने से समझ जाएंगे। परंतु उसे समझाने से कोई ऊंचा पद थोड़े ही पा सकेंगे। जब तक पूरे देही अभिमानी न बने, उस देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, उस देह अभिमानी आने से भारत गिरा है, डाउन फॉल हुआ है। तो डाउन फॉल का जो मूल कारण है, मूल जड़ है, वो है देह अभिमान। यहां देखते भी हो कितने देह अभिमानी है, और इनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम देह अभिमानी हैं। हम बच्चों को डायरेक्शन कौन देते हैं वो ही बात भूल जाते हैं। तो सभी बातें समझो, रोज से बाबा ही समझाते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि देखो कभी नहीं समझे, कोई को कुछ कहते हैं हमेशा समझे उसे बाबा, तुमको शिव बाबा याद तो पड़े ना, कौन है अपन को आत्मा तो समझो ना। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो, तुम देवाभिमानी बनते हो और ये इनको ही समझते हो कि सब कुछ बोलने वाले, सब कुछ कहने या समझाने वाले ये ही है ब्रह्मा बाबा, यही हमको कहते हैं बोलते हैं। तो ऐसा देवाभिमानी बनने से तुम्हारी बिल्कुल सत्यानाश हो जाती है। ने तुम्हारी सत्यानाश की है, भारत का डाउनफॉल हुआ है। सब देवाभिमानी से देवाभिमानी आ गए, ऑल वर्ल्ड साधु संत महात्मा सब अभी विचार करने की समझने की बात है ना। अब तो बाबा कहते हैं ना सिर्फ माम एकम याद करो, यानी देवी अभिमानी बनो। अपन को निश्चय आत्मा करो, तुम आत्मा हो ना, पहले तो मुख्य आत्मा है ना, ये शरीर तो बाद में लिया ना। ये आत्मा सुनती है, कहती है, चलती है, पार्ट बजाती है आत्मा। कोई देह तो वही पार्ट बजाता है, देह तो पांच जड़ तत्वों का बना हुआ है। आत्मा इस देह द्वारा पार्ट बजाती है, सब बातें तुम भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए, एकदम भूल गए। ये आत्मा ईमान देवताओं में था, इसलिए वो देवताएं मोजित गाए जाते हैं। बाप अभी देखते हैं दिन बीत गई, ये बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु मनुष्यों की चलन ही तो देखी जाती है ना। मनुष्य होशियार तो बहुत होते जाते हैं, विज्ञानी भी बहुत उठाते हैं, परंतु जो देहाभिमान है ना, वो देहाभिमान तो टूटता ही नहीं है। इसलिए ऐसे फेल हो जाते, यानी वो खुशी, वो नशा, जो ईश्वरीय नशा होना चाहिए वो रहता ही नहीं है। पीछे कुकर्मी बन जाते, बड़े बड़े विकर्म हो जाते। विकर्मों के कारण उन बड़े बड़ों की भी हालत देखो क्या हो जाती है। सजाओं की बात भी बाबा बोलते हैं ना, तो देखो हम तुमको पढ़ाते तो देवी अभिमानी बनो, देवी अभिमानी बनने से ही तुमको अवज्ञाएं बहुत होती है, सौ गुना दंड पड़ जाता है। ये दंड तुम बच्चों के ऊपर चढ़ता आ जाता है तो तुम बहुत कड़ी सजाए खाएंगे। तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, नहीं तो ट्रिब्यूनल तो यहाँ भी होती है ना, परंतु ये ट्रिब्यूनल ऊपर में कैसे होगी? तो ट्रिब्यूनल की बात शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई है, नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तो देखो ये तुम्हारा खाता वहां धर्मराज के यहाँ भी बढ़ता रहता है, वहां भी मेरा साथी धर्मराज है, और यहां भी मेरा साथी है। कौन? धर्मराज किसे कहा जाए? धर्म का राजा। कौन धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा को ही कहेंगे। तो जो धारणाओं का राजा है वो ही धर्मराज बनता है अंत में। जो तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुमको अच्छा फल मिलता है, और अभी तुम बुरे कर्म करते हो तो सजाएं बहुत खाते हो। ऐसे तो जन्म जन्मांतर गर्भ जेल में भी सजाएं खाते रहे, उसकी भी आखिरी है। बरोबर एक था, गर्भ में बैठा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, बोलता था मैं यहाँ आराम से बैठा रहूं। और ये बच्चे तो अंदर में बहुत सजाएं खाते रहते, कहते हमको बाहर निकालो हम फिर पाप नहीं करेंगे। तो ये भी तो दृष्टांत है ना। कहते कृष्ण गर्भ में बड़े आराम से बैठा था, का अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं बड़े आराम से था। बात कहते हैं ये सब है इस समय की बातें, शास्त्रों जो कुछ भी मैं है या जहां कहीं भी जो गायन है सिर्फ इस समय की महिमा है, गायन है। जबकि बाप आए हैं तो जो महिमा है वो सिर्फ एक की है, दूसरे कोई की भी महिमा होती नहीं। सब लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती बट डायमंड, सब लिखा जाता है। स्मृति सृजंती सृजंती है, तब तो आज भी कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तीन कपड़ों का, तीन दिन वाला झंडा, तीन मूर्तियों की यादगार है ना। तो त्रिमूर्ति की जयंती हुई थी ना, बाकी तो जो भी जयंती है ना वो दस नाते पहनी है। क्योंकि और जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर आती है वो सब नीचे उतरती है और सारी दुनिया को नीचे उतारने के निमित्त बनती है। महिमा तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति बाप की है, तो और किसकी महिमा करेंगे, क्या करेंगे। सिवाय शिव बाबा के और तो कोई भी पावन नहीं बना सकता। तो पावन बनते हो, पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो। लेकिन याद किसको करते हो, पतित बनाने वाले को याद करते हो या पावन बनाने वाले को याद करते हो। अभी तो पावन बनाने वाला कौन है, जरूर कोई एवर प्योर है। ये बात कोई भी बच्चा नहीं जानते, एक भी नहीं जानते। इतने तो देह अभिमानी बन गए हैं यहाँ, वो जो देवताएं देही अभिमानी थे वो भी नहीं जानते थे। तो अभी संगम युग की तुम्हारी देही अभिमानी की दशा 21 जन्म चलती है। और संगम युग में तुम्हारी देही अभिमानी की दशा सदाकाल के लिए तब बनती है जब शिव जयंती होती है। त्रिमूर्ति शिव जयंती बट डायमंड, बाप आकर तुम सबको पवित्र बनाते। तो देखो उन देवताओं को भी पावन बनाने वाला बाप है, तो बलियारी तो एक बाप की होनी चाहिए। कहाँ वो शिव बाबा की बलिहारी और कहाँ ये श्री श्री श्रेष्ठ 108 कहने वाले, कहाँ भारत को स्वर्ग बनाने वाला। और यहाँ भारत में जन्म भी लेते हैं, कौन, शिव बाबा। तो देखो इसको भी पता नहीं है वो शिव बाबा कब आया था? कब आया था? छत्तीस में आया, सैतालीस में आया, छिहत्तर में आया या कब आया? है शिव बाबा? शिव बाबा छिहत्तर में आया है? ये दस वर्ष की घोषणा है, लक्ष्मी नारायण के लिए की गई है। राम कहो शंकर कहो और शिव शंकर एक तो नहीं है ना, तो जन्म से लेकर के शिव बाबा की हिस्ट्री चाहिए। आते तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो छत्तीस में आए, सैतालीस में आए, छिहत्तर में आए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति किसी की हुई है? तो बताते हैं भक्ति मार्ग में मानते भी है, गायन भी करते हैं महाशिवरात्रि। जब इस दुनिया में घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होती है तब आते हैं। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, जो अपन को ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण कहते हैं वो भी अंधकार में। देखो शिव बाबा कब आया, इसकी हिस्ट्री चाहिए। कब जानेंगे कि पहले नंबर में शिव जयंती? अरे शिव तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है ना, और ये तो मनुष्य कहे जाते हैं, कहते ही रहते शिवो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वम्। तो ये शिवो हम कहने वाले कितने बैठे बन गए, सभी बाबा आकर के लाने देते हैं, तुमने मेरी कितनी ज्ञानी की है। कहते हैं ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भारत में भगवान की बहुत ग्लानी होती है, ये ग्लानी तब पूरी होती है करते करते मनुष्य पूरे तक से बन जाते। मार से भी पूरा अंधश्रद्धा का मार, बत्ती मार उसमें भी ज्ञानी, सारे भारत में ज्ञानी ही ज्ञानी।